आग इसका हम भाग छह लेंगे। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये जो कुछ सीरीज चल रहे हैं कर्म के नियम, कर्म के सिद्धांत के ऊपर, जहां अब भगवान जो कि कर्म के बंधन में नहीं है और डायरेक्टली वो हमारे कर्मों के नियंता भी नहीं है, उन्होंने नियुक्त किया है प्रकृति को ये कर्म के नियमों को हमारे ऊपर लागू कराने के लिए, परंतु भली भांति वो जान रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो विषय इतना गहन है, जो विषय इतना आवश्यक है, वो विषय हम मनुष्यों के लिए न केवल समझना, जैसे कि आवश्यक और गहन ये दोनों बता दिया, बल्कि अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ होता है वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो कर्म जिससे न तो कोई बच सका है, ये कर्म का नियम, न कोई इससे बच पाएगा। जैसे ही हमने ये भौतिक शरीर धारण किया तो ये विशेष रूप से हम मनुष्यों के लिए ये कर्म के नियम हमारे ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि मीटर ऑन हो जाता है। आपने टैक्सी पकड़ी, बैठे आप टैक्सी में, मीटर ऑन, चाहे वो टैक्सी चले या न चले मीटर ऑन है। वेटिंग पीरियड, वेटिंग चार्जेस भी लगते हैं। तो जीवन के कुछ मूल तत्व हैं, विशेष रूप से ये कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए। तो जीव, जो हम लोग जीवात्मा, जगत, हम जो इस जगत में हम इतने अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, और जगदीश जो कि इस जगत में आते रहते हैं और हैं हमारे साथ परमात्मा के रूप में, परंतु ये सब हमें क्या सिखा रहे हैं? जीवन। तो ये चार महत्वपूर्ण हमारे मूल तत्व हैं, जीव, जगत, जगदीश और जीवन। तो इसमें परिवर्तनशील क्या है? न तो जीव परिवर्तनशील है, न ये जगत हम इसको बदल सकते हैं, और जगदीश तो बिल्कुल नहीं। तो क्या परिवर्तनशील है? हमारा जीवन। और वो जीवन किससे बना हुआ है? हमारे इच्छाओं से, हमारी इच्छा जो कि कर्म में परिणित होती है, हमारे कर्मों से। तो हम इस मुद्दे पर थे कि एक तरफ है हमारी स्वेच्छा, हम जो कर्म करते हैं, और दूसरी तरफ है जिसे लोग कहते हैं भाग्य, डेस्टिनी। तो इस विषय में हमने हमारे पिछले सेटिंग्स में चर्चा करी कि कर्म और डेस्टिनी, इन दोनों में अंतर क्या है। तो ये हमने उदाहरण लिया था, बारिश का मौसम चल रहा है, उपयुक्त उदाहरण है, कि वर्षा जो है वो यदि हमारी तकदीर है, हमारा भाग्य है कि पिछले इतने जन्मों से लिखित हमारा भाग्य जो हमें मिल रहा है, परंतु जो स्वेच्छा, जो कर्म अभी हम कर सकते हैं उससे बचने के लिए, वो उस छाते के समान है। अब ये निर्भर करता है कि हमने उस वर्षा से बचने के लिए या न बचने के लिए जो भी छाता इस्तेमाल किया है वो हमारे भाग्य को तो नहीं बदल सकता, परंतु उस भाग्य का प्रभाव हमारे ऊपर कितना होगा इसमें फेर बदलाव ला सकता है। तो ये दैववाद और कर्मवाद, ये एक दोनों ऐसे सिद्धांत हैं जो कि विशेष रूप से हम हिंदुओं को भारत में समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक श्रेणी देखी जाती है कर्मवाद वाली श्रेणी कि करते रहो, कर्म करते रहो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और एक है कि बस दैव वो सब कुछ हम हमारे संभालेंगे। तो इसमें अक्सर क्या होता है कि जब दैव हमारा साथ नहीं देते हमारी अनुसार, वो तो हर समय हमारा साथ देते हैं, परंतु हमारे अनुसार जब दैव हमारा साथ नहीं देते तो तुरंत नजर ऊपर जाती है, उंगली ऊपर जाती है। मैं हाल ही में ये उदाहरण दे रहा था कि हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक बार प्रसादम सर्विंग फीस्ट, हमारा प्रभुपाद अपीयरेंस डे का फीस्ट सर्विंग में कर रहा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे आइटम्स होते हैं। प्रभुपाद अपीयरेंस डे, नंदोत्सव भी है उस दिन, तो करीब 8-10 आइटम्स थे, 8-course फीस्ट ऐसा था, और सब एक एक आइटम्स अपने आप में एग्जॉटिक जिसको कहते। तो मेरे अंडर जो स्पेशल पनीर की सब्जी, लंबी लाइन लगी हुई। अब आप लोग भी बहुत लाइन में लगते हो यहां पर, तो आप लोगों ने क्या अनुभव किया है जब फीस्ट है, विशेष रूप से जब मेनू पता है कि केवल राजमा है और आलू मटर है, तो वो लाइन में आप थोड़ा इत्मीनान से खड़े रहते, लेकिन जब आप देखते हो कि एक लाइन में 8-10 बाल्टियां हैं और आज फीस्ट का दिन है और काउंटर लगने में बहुत समय लगा है, तो और उत्कंठा बढ़ा देते लाइन में खड़े हो, तो फिर नजर कहां होती है आपकी, आपकी प्लेट में और सामने वाली की प्लेट में, कि उसकी प्लेट में जो जो आइटम्स डाले वो आपकी प्लेट में आए कि नहीं। एक्सपीरियंस किया आपने, कोई गलती से भी वो सर्वर की ओर देखता नहीं है जो सर्व कर रहे हैं उसके ओर, क्योंकि पूरा फोकस हो प्लेट के ऊपर, कौन से खाचे में कहां क्या डालना है, डलवाना है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इतना बड़ा वो चम्मच था, चम्मच से भर भर के वो पनीर की सब्जी में डाल रहा, तो मैंने सोचा कि चलो एक एक्सपीरियंस करते, क्योंकि हजारों की संख्या में ले रहे हैं, कोई मेरे तरफ देख ही नहीं रहा था। ऐसी समाधि देखी नहीं मैंने। तो फिर एक बंदे को, एक डिवोटी को, उनको मैंने इतनी सी सब्जी डाली, वो बेचारा पनीर भी लुढ़क लुढ़क कर गया अंदर, मुश्किल से वो जो ग्रेवी थी यहां वहां उसको ढक रही थी पनीर को, चटनी की तरह। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये डिवोटी जैसे ही इसने देखा सामने वाले की प्लेट में इतनी पनीर की सब्जी, मेरे प्लेट में चटनी की तरह इतनी सी सब्जी, तुरंत उसकी नजर कहां गई, मेरे ऊपर, और ऐसी नजर मिलाई उसने जैसे मुचकुंद महाराज ने काले यवन को भस्म किया था। तो मुझे लग रहा था प्रभुपाद अपीयरेंस डे के दिन डिसअपीयरेंस मेरा ना हो जाए। तो फिर मैंने और एक्स्ट्रा भर के उनको डाल दी। तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट मैं क्यों कर रहा था, ये देखने के लिए कि हम लोग सब वो लाइन में प्लेट लेकर खड़े हैं, भगवान अपनी मेहरबानियों का काउंटर लगाए रखते हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग मेहरबानियों का काउंटर रहता है, हम लोग सब लाइन में प्लेट लेकर खड़े रहते हैं और तब तक भगवान को नहीं देखते जब तक कि हमारे अनुसार प्लेट में हमारी सब्जियां पनीर वगैरह इत्यादि गुलाब जामुन सब मिलते जा रहा है। जैसे ही उसमें से एक भी आइटम, चाहे वो सलाद क्यों ना हो, और उसमें भी अगर एक भी ककड़ी कम आई, तुरंत नजर ऊपर मेरे प्लेट में। और नजर ऊपर बहुत से कारणों की वजह से होती है, ये कारण कि मेरे प्लेट में ये पनीर कम क्यों, ये ककड़ी कम क्यों, ये तो ठीक है, इसके प्लेट में इतना क्यों, इसने कौन सा गुल खिलाया कि इसके प्लेट में इतना डाल रहे हो, ये भी तो मेरे ही साथ सब कुछ कर रहा है, बल्कि मैंने इसको प्रीच किया है। तो कई बार वो सारी शिकायतें होती, नजर ऊपर होती। तो यहां पर होता क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कई बार भगवान हमें वो अपनी गोद में बिठाते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लैप। तो कभी लैप मिलता है, कभी स्लैप मिलता है। जैसे कि एक कंजूस व्यक्ति था, तो उस घर में बैठा हुआ एक बार उसके छत से ईंट उसके सर पे गिर गई, उसी की छत की ईंट उसके सर पे गिरी। तो क्योंकि कंजूस था इसलिए माल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया था उसने खुद के ही मकान का, अक्सर लोग दूसरे के मकान का माल अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, यहां पर इसने, ये कंजूस था, इसने खुद का ही माल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, तो ईंट उसके ही सर पे गिरी। और यहां पे क्या कहते हैं उसको, टेंगुल, ऐसे सूझ गया। तो उसके रिश्तेदार वगैरह वो देखे कि अरे भाई खून निकल रहा है ये सब, तो तुरंत उसको अस्पताल ले जाने के लिए, और वो बेहोशी की अवस्था में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा से होश थे, थोड़ा सा ऐसे बेहोश था, सर पे ईंट गिरी हुई है। तो जैसे ही एम्बुलेंस के अंदर उनको रखा गया, अस्पताल ले जा रहे हैं, तो ये थोड़े बहुत अपने होश में वो परिवार वालों को मना कर रहा है, तू कहां ले जा रहे तुम लोग मुझे, अरे एक ईंट ही गिरी है, वहां पे दो दो हजार का वो बिल काटेंगे, दो रुपए की टैबलेट ले लो ठीक हो जाएगा ये दो हफ्ते में। तो माने नहीं, वो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने वहां पर 2000 का बिल फाड़ दिया। और ये मैंने कहा था, अरे मैं जानता हूं मेरी ईंट है, ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो ऐसे चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है, डॉक्टर ने कहा सेठ जी आप यहां पर आए, यहां पर आप पहुंचे, आपको पहुंचने में आधा घंटा लगा, आपके ऊपर जो भी हमने मरम पट्टी करी उसको और 20 मिनट लगे, आपको पता है इस दौरान हुआ क्या है, आपकी छत गिर गई है, वो जहां पर केवल ईंट गिरी थी, 2 रुपए की टैबलेट में आप बैठे रहते थे उसी छत के नीचे, होता क्या आपका काम तमाम। तब उसे समझ में आया कि कई बार दैव जो हैं हमें उस छत गिरने से पहले ईंट फेंकते हैं, चाहे इतना सा टिंगुल आए, लेकिन किससे बचा रहे हैं, पूरी छत गिरने से बचा रहे हैं। इसलिए अगली बार हमें भगवान की ओर, अगर उनकी ओर हमको कोई इशारा भी करना है, हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे होंगे, तो वो इस प्रकार से करना है। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं वो झूले के समान है, झूले झूला झूले हैं ना आप लोग, तो झूला कैसे झुलाया जाता है? जब कोई दूसरा आपको झूला झुला रहा है तो वो पीछे से आपको धक्का लगाएगा और फिर आप आगे जाएंगे और फिर उतना ही पीछे जाएंगे। तो जितना पीछे गए हैं या जितना पीछे खींचकर आपको छोड़ा जाएगा उस झूले पर, उतना ही आगे आप जाएंगे कि नहीं। तो भगवान अक्सर हमारे साथ हमको झूला झुलाते हैं। तो यदि दुख पीछे खींचने के समान है तो समझ लेना कि यदि मेरे जीवन में इतना खिंचाव दुख का हो रहा है तो भगवान जब छोड़ेंगे तो उतनी ही रफ्तार से सुख भी प्राप्त होगा। तो ये जीवन कैसा है? हमारी झूलन यात्रा। हाँ, सुख और दुख। स्वास्थ्य कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी मूड अच्छा होगा कभी मूड अच्छा नहीं होगा, कभी गीतामृत में आएंगे कभी नहीं आएंगे। इसे कहते हैं लैप वर्सेस स्लैप। तो ये हमने पिछली बार उदाहरण लिया था अपना कर्मवाद और दैववाद का, कि कर्मवाद जो बस मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है। हमारे पूना के जो टेंपल प्रेसिडेंट है राधेश्याम प्रभु, एक बार वो बता रहे थे उनके बचपन का एक किस्सा, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहे थे कि उनके आस पड़ोस में जहां पर वो रहते थे सांप दिखा, वो भी जहरीला सांप। तो सबको चौकन्ना किया गया कि सांप है कहीं तो वो छिपा हुआ है। तो ये लोग सब अपने घर में टेबल के ऊपर खड़े हो गए कि यहां पर सांप नहीं आएगा और काटेगा नहीं। तो उतर ही नहीं रहे, आधा दिन बीत गया टेबल से उतर नहीं रहे, टेबल के ऊपर डरे हुए। फिर किसी ने उस सांप को पकड़ लिया, सांप को मार डाला। अब जैसे इनको पता चला, ये नीचे पूरे बहादुरी के साथ नीचे उतरे, छड़ी ली और उस मरे हुए सांप को और मारा। तो ये इस किस्से को एक बार बता रहे थे और बोल रहे थे कि कई बार ये जो डुअरशिप है हमारा, इसी प्रकार से जैसे भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन यदि तू नहीं मारेगा ये तो वैसे ही मरने वाले मेरे हाथों। तो क्या है, सांप को वैसे ही मार दिया है, तू छड़ी लेके मारता रहे, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इसने भी कुछ अपना पराक्रम दिखाया। जैसे रामायण में एक लोक कथा है कि वानर सेना जब लड़ रही थी रावण की सेना से, तो हर दिन लड़ाई के पश्चात वानर सब इकट्ठा होते और वो अपना अपना पराक्रम बताते कि आज उन्होंने क्या किया। और वानर सेना क्या उनको लड़ाई आती थी, कोई पत्थर उठा के मारते थे, कोई छड़ी उठा के, कोई वृक्ष की कोई टहनियां उठा के, ऐसी लड़ाई करते थे वो रावण की सेना के साथ। तो एक बंदर ने, होता ना कई होते हैं जो डींगे मार रहा था, वो बंदर डींगे मारते हुए कहता है क्या पता आप लोगों को, मैं बताता हूं मैंने क्या कैसे मारा एक सैनिक को। अरे बड़ा सैनिक था वो, ऐसा हट्टा खट्टा लंबा मुष्ठंडा था, उसका मैंने बाया हाथ काटा पहले। अच्छा तूने, तू तो ऐसा है। अरे फिर उसका मैंने दाया हाथ काटा, पहले बाया फिर पूरा अलग कर दिया, उसके धड़ से अलग कर दिया, दोनों हाथ अलग कर, फिर और फिर उसका बाया पैर काट दिया, फिर उसका दाया पैर काट दिया। अरे तेरी। अच्छा तो एक बंदर ने पूछा, अरे इतना सब तू कर रहा था उसका सर काट देता, वो पहले से किसी ने काट दिया। तो ये बहुत विशेष थे ये सारे वानर। लक्ष्मण, एक बार लक्ष्मण ने देखा कि रामचंद्र जी बैठे हुए हैं सीता के साथ और ये युद्ध होने के पश्चात की बात है, और ये सारे बंदर पेड़ के ऊपर, अलग अलग टहनियों के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे रामचंद्र जी बैठे हैं सीता के साथ, पेड़ के ऊपर सब लोग जाकर छलांग लगाकर बैठ गए। लक्ष्मण इनकी तरफ देख रहे हैं, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम ऊपर जाके बैठ रहे हो भगवान के। ये लोग लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं कि अब हम तो बंदर हैं, हम तो ऊपर ही बैठते हैं, हमको क्या पता। तो लक्ष्मण की नजर देखकर फिर डर के मारे वो लोग सब नीचे आए। तो उसके पश्चात हुआ क्या कि अब 14 वर्ष के पश्चात रामचंद्र जी लौटे हैं और वो भी विजयी होकर लौटे हैं, विजय दशमी का महोत्सव, विजयी होकर लौटे हैं। तो सबसे पहला न्योता रामचंद्र जी को मिला कहां से? महाराज जनक। महाराज जनक ने बुलाया किस पर? फीस्ट पर, कि 14 साल से आप लोग केवल कंदमूल खाए तो इसलिए ससुर जी बुला रहे हैं। कौन है जनक महाराज? तो ससुराल जाना है। तो रामचंद्र जी थोड़ा केयरफुल हो गए कि ससुराल जाना है। तो जैसे ही अब ये न्योता मिला उनको, तो सबको बुलाया गया था, लक्ष्मण को, सबको बुलाया गया था और भाइयों को, तो सबको न्योता। यहां पर सारी वानर सेना, उन्होंने सुना हम भी चलेंगे। रामचंद्र जी ने कहा भैया अब तक ठीक था, रावण की लंका तक ठीक था, अयोध्या तक ठीक था, ये इज्जत का मामला है, मेरा ससुराल है। तो वानर सेना, नहीं हम तो चलेंगे, इतनी सेवा आपकी हमने की है, हम भी तो देखना चाहते हैं आपका ससुराल कैसा है और आपकी कैसी जमाई राजा की कैसी आपकी पेशकश वहां पर करते हैं, वो लोग देखना चाहेंगे। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं सब इनका जिम्मा लेता हूं, आप घबराइए मत, ये सब कंट्रोल में रहेंगे, मेरे अंडर रहेंगे। तो अभी वहां पर पहुंचे जनक महाराज, वो आश्चर्यचकित, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी, महाराज जनक के लिए भी चैलेंज था इनको सबको खिलाना। एक तो वानर, ऊपर से संख्या इतनी इनकी, अरबों खरबों थे ये लोग। तो महाराज जनक ने चुनौती ली, तो हनुमान जी को कहा कि भाई आप इनके सरदार हैं तो आप थोड़ा इनको कंट्रोल में रखिए और टाइमिंग के अनुसार। तो हनुमान जी ने सबको कह दिया 1 बजे लंच होगा, उस घंटी बजाई जाएगी और घंटी सुनने के पश्चात ही आना है प्रसादम हॉल में। सोचो कितना बड़ा प्रसादम हॉल आयोजित किया था उनके लिए। तो हुआ क्या, पहले दिन ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तो दूसरे दिन 12 बजे घंटी बज गई और सब लोग आ गए प्रसादम हॉल में। अभी तक कोई वहां पर चटाई नहीं बिछी हुई है, कोई पत्तल नहीं लगे हुए हैं, वो लोग सब आ गए और यहां वहां देखा, प्रसाद तो रेडी था, सर्विंग शुरू कर दिया। तो हनुमान जी को पता चला, महाराज जनक, रामचंद्र जी बोले अरे देखो वहां पर क्या कर रहे हैं ना, वो 12 बजे पहुंच गए वो लोग सब। तो हनुमान जी जाके वहां पर देखते हैं, ये तुम लोग 1 घंटे पहले कैसे आए, घंटी बज गई, किसने बजाई, किसने बजाई, किसने बजाई, किसको पता नहीं किसने बजाई। फिर हनुमान जी ने कहा देखो मैं जो करूंगा वही तुमको करना है, कान खोल के सुन लो, मुझे देखते रहना, मैं जो करूंगा वही तुमको करना। सब लोग हनुमान जी की ओर देख, अभी प्रसादम सर्विंग हो गया, सब लोग हनुमान जी की ओर देख रहे हैं कि हनुमान जी खाना शुरू करेंगे तो हम भी खाना शुरू करेंगे। तो हनुमान जी ने सबसे पहले आम उठाया, आम सर्व किया था, आम उठाया। तो आम खाने के लिए अभी हनुमान जी भूल गए कि मैंने ये आदेश दिया था कि मुझे देखकर सब कुछ करना। तो हनुमान जी चूसने के लिए आम को दबाया, वो गुठली ऊपर उड़ी, वो आम की गुठली ऊपर उड़ी, हनुमान जी ने छलांग लगाई उस गुठली को नीचे गिरने से पहले पकड़ने के लिए। सबने क्या सुना था, हनुमान जी जो करेंगे वही करना है। सबने अपने अपने आम उठाए, दबा दबा गुडली उठा रहे। अब आप वो सीन इमेजिन कीजिए उस प्रसादम हॉल में क्या हुआ। ये थोड़ा साइड पॉइंट याद आ गया। तो कर्मवाद और दैववाद, इसमें ये अंतर है। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कर्मवाद वीडियो गेम है, आजकल वीडियो गेम के विषय में बहुत बोला जा रहा है, और दैववाद वो लूडो का गेम है, लेकिन हमारे लिए ये है गेम ऑफ चेस, कि जिसके अंदर हमें आगे की सोचकर मनुष्य, हम बता रहे थे हमारे जन्माष्टमी के प्रवचन में कि संस्कृति का अर्थ क्या है हम मनुष्यों के लिए, कि हमारे अतीत से हम हमारे वर्तमान को सुधारें और हमारे वर्तमान से हम हमारे भविष्य को सुधारें। यह एक परिभाषा है संस्कृति की। तो यह प्रश्न हमने लिया था, यदि आपको याद है, डिड अर्जुन विन द कुरुक्षेत्र वॉर बिकॉज ऑफ हियरिंग द भगवद गीता। ये जो कवर पेज है भगवद गीता का, ये ठीक ठीक बताता है कि बैलेंस कर्मवाद में और दैववाद में कैसा होना चाहिए। कितनी बार हमने कवर पेज देखा है भगवद गीता का, बहुत बार यही दिखता है घरों में, टाइम नहीं मिलता अंदर खोलने का, तो कवर पेज ज्यादा दिखता रहता है। तो ये कवर पेज के ऊपर ये जो चित्र है, इसमें कर्मवाद और दैववाद ये दोनों का बैलेंस बताया गया है। कैसे? कि अर्जुन का रथ भगवान हांक रहे हैं, परंतु युद्ध अर्जुन को लड़ना है। जो रथ हांक रहे हैं उनके अंदर सारी शक्ति है इस युद्ध को जीतने की, और बहुत दफा उन्होंने दिखा भी दिया, नमूने अपने एक एक नमूना दिखाया कि कैसे उनके वजह से ये रथ टिका हुआ है अर्जुन। तो अर्जुन यदि ये सोचते कि अरे सबसे बड़े दैव मेरा रथ हांक रहे हैं, तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। और फिर एक एक्सट्रीम है कि मैं ही सब कुछ करूंगा, युद्ध जीतूंगा, मुझे इनकी जरूरत नहीं। इसलिए भगवद गीता का कवर पेज परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है बैलेंस किसका, कर्मवाद और दैववाद का। फिर हमने ये उदाहरण लिया था द्रौपदी और अर्जुन का, कि द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, परंतु पूरा प्रयास करने के पश्चात अर्जुन ने हाथ ऊपर कर दिए थे प्रथम अध्याय में, फिर 18वें अध्याय में अर्जुन ने अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर कर दिया भगवान के सेवा हेतु। तो अब हम इसी कर्म के सिद्धांत की चर्चा में एक नए विषय पर आते हैं। ये विषय क्या है? एम्बिशन वर्सेस डेस्टिनी। एम्बिशन किसे कहते हैं? महत्वाकांक्षा। कि महत्वाकांक्षा क्या है? कि जैसे बच्चों को पूछो क्या बनोगे बड़ा होकर, तो बड़े उनके ऐसे ऐसे एम्बिशंस, कई बार बोले उनको बोला जाता है कि ये बोलना, जब भी कोई पूछेगा तो बड़ा होकर क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनूंगा, बड़ा एम्बिशन होता है प्रधानमंत्री बनूंगा। फिर जब बड़ा होता है समझ में आता है प्रधानमंत्री तो मुश्किल है, मंत्री बन जाऊं ठीक है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, प्रधानमंत्री मंत्री छोड़ो संतरी भी बन जाओ, वो ही बहुत है। तो शुरुआत में वो महत्वाकांक्षा क्या रहती है, करोड़पति बन जाओ। फिर समझ में आता है अरे बाप रे तो बहुत मुश्किल है, कम से कम लखपति तो बन जाओ, वो ही मुश्किल है, कम से कम पति तो बन जाओ, वो तो निभा लूं, एक 1000-2000 की नौकरी मिल जाए बस उसमें तसल्ली कर लेते हैं। तो होता क्या है, एक होते हमारी महत्वाकांक्षाएं, अच्छा है होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स शुड बी एम्बिशियस, और एक तरफ है जो रियलिटी है, हमारे भाग्य की रियलिटी है, उसको भी समझना है कि हमारी हमारे एम्बिशन और हमारा जो डेस्टिनी है उसको हमको डिसरिगार्ड नहीं करना है, परंतु साथ में लेते हुए उस एम्बिशन को पूरा करना। इसलिए इस विषय पर हम सबसे पहला ये उदाहरण लेंगे कि चार प्रकार के लोग होते हैं, और ये चार प्रकार के लोग, इनको समझने के लिए हमने उदाहरण लिया है अलार्म क्लॉक। तो हम सब ने अनुभव किया है अलार्म क्लॉक हम लगाते हैं, भक्त बनने के बाद तो ज्यादा यूज करते हैं अलार्म क्लॉक। तो अलार्म क्लॉक जब कोई लगाता है तो चार प्रकार के लोग उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला बंदा उसको सुनाई नहीं देता है, ऐसी नींद में। और आपको कई बार आश्चर्य होगा, ये हमने अनुभव किया जब मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में था, तो वहां पर हम लोग सब ऐसे ही टेंपल हॉल में सोते थे, रात को प्रोग्राम के बाद हमारी चटाई लेकर टेंपल हॉल में सोते थे। कई बार 11:30 बजे प्रोग्राम से आए हैं, जगह ही नहीं मिलती थी, जगह ढूंढना, क्योंकि एक के बाद एक चटाई भी और मच्छरदानी ये सब कुछ ऐसे लगे हुई थे, लाइन से लगी हुई रहती थी, तो कहीं बीच में यहां वहां जगह मिल जाए उसमें आपकी चटाई डालो सो जाओ। और कई बार ऐसा अनुभव हमारा होता था कि आप 11:30 बजे आए हो, 12:45 तक आपको नींद लगी, आंख लगी, यहां 2:30 बजे किसी का अलार्म बजना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सेवा होगी, या कई डिवोटीज वो पहले चैंटिंग करते थे 32 माला, कई ना 25 माला करते थे, पहले चैंटिंग करते थे। और कई, मैं आपको ये बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूं, एक बंदा वहां पर था, वो 2:30 बजे अलार्म लगाता था अपना, और उसको छोड़ के पूरा टेम्पल हॉल जग जाता था। तो एक बार मैं वो बहुत दूर प्रोग्राम कर आया था, न्यू बॉम्बे से आया था, न्यू बॉम्बे से प्रोग्राम करते करते मुझे 12:30 बज गए थे आते आते। तो आया, फिर मैं इतना थका था कि जैसे ही वो चटाई फैलती और मैं भी फैल कर सो जाता, तो देखा बगल में ये इसने चटाई लगा रखी है, और ये सोया नहीं था, ये बस अलार्म अपना सेट कर रहा था, सोने जाने वाला था। तो मैंने पूछा कि प्रभु जी कितने बजे का लगाया अलार्म? वही 2:30 बजे का। अब इनको कोई इसमें कभी कुछ रंज भी नहीं होता था, रंज समझते हैं आप, कभी ग्लानी नहीं होती थी कि इनके वजह से कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ रहे हैं। तो अब बाकी मैंने देखा और कहीं उठ के सो जाऊं, लेकिन देखा कि वो नेक्स्ट डे फेस्टिवल था, सब जगह पैक था, कहीं जगह नहीं सोने की इसके अलावा, और मेरे को हिम्मत भी नहीं थी, ताकत भी नहीं थी। तो मैंने कहा प्रभु जी ऐसा करो, बीच में रखो ना अलार्म, मैं भी उठना चाहता हूं कल। हाँ अच्छा, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो उन्होंने दोनों चटाई के बीच में अलार्म रखी, जैसे ही उन्होंने करवट बदली आप लोग बुद्धिमान है, और सुबह इनको पता नहीं चलता, सुबह कभी इन्होंने पूछा नहीं कि अलार्म बजा कि नहीं बजा। ये विशेष बात थी, हमारे वहां पर बहुत सीनियर ब्रह्मचारी, आयु में बहुत सीनियर मथुरा मोहन प्रभु, उनको बहुत कच्ची नींद उनकी थी, अभी भी है। तो जब भी ऐसा अलार्म बजता तो वो पूरे टेंपल हॉल में टॉर्च लेके ढूंढते किसका बज रहा है, कभी किसी का 2:30 बजे बज रहा है, 2:45 बजे बज रहा है। एक बार मैंने देखा कि ये ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेके, अलार्म बज रहा है, आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन कहां से आ रही है आवाज, वो ढूंढ रहे हैं। तो मैं भी जग गया था, तो मैं उनको गाइड कर रहा हूं, रात के 3 बज रहे हैं या सुबह के 3, मैं उनको गाइड कर रहा हूं, प्रभु जी थोड़ा सा वो चटाई थोड़ा सा आप वहां से राइट जाइए, उधर से वो अलार्म की आवाज आ रही है। वो गए, कैसे तो पैर इधर उधर करके वो अलार्म उठाया, जिसने लगाया था वो अपना इत्मीनान से सो रहे थे, अलार्म उठाया। और हमारा उधर का मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर से उधर 7 KM मुंशी मार्ग पर फेंके, वो अलार्म फेंका और अच्छा थ्रो था उनका, पूरा वो मार्बल कोर्टयार्ड क्रॉस करके सीधा वो सड़क पर जाकर अलार्म क्लॉक गिरा। इतने ये गुस्से में थे कि नींद हराम कर दी, उठता तो खुद है नहीं, और पूरा अलार्म क्लॉक फेंक दिया। मैंने देखा अलार्म के टुकड़े हो गए लेकिन बज रहा है, वो उधर भी जाके वो बज रहा है। तो ये पहले श्रेणी के होते हैं। अच्छा, दूसरी श्रेणी के होते हैं कि वो अलार्म उनको सुनाई देता है, पहले वालों को सुनाई नहीं देता है, ये दूसरी श्रेणी के उनको अलार्म सुनाई देता है। वो स्नूज फीचर जो होता है ना अलार्म के अंदर, वो जानबूझ के उसको लगा के रखते हैं, उसको फिर स्नूज पे हल्के से उसको टैप करेंगे, फिर क्या होगा 5 मिनट बाद वो वापस बजेगा। वो 5 मिनट की जो नींद है, ऐसी मीठी नींद आती है, फिर उसको वापस है 5 मिनट। तो ये कौन से श्रेणी के लोग हैं कि जो अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को स्नूज पे डालते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं कि अगले गीतामृत में आएंगे, अगली जन्माष्टमी से सोलामाला करेंगे, अगली बार ये करेंगे, अगली बार करेंगे, इस बार आप कर लो। तो उसको वो कौन सी कैटेगरी के हैं, पोस्टपोनिंग पोस्टपोनिंग पोस्टपोनिंग, स्नूज करते रहते हैं, करते रहते। और अच्छा, ये थर्ड कैटेगरी भी इंटरेस्टिंग है। ये उठते हैं, आवाज सुनाई दी, उठे, उठते स्नूज वूज नहीं करते, सीधा बंद करते हैं, पूरा पैक करके रजाई ऊपर लेके अलार्म भी क्रोध में उधर आग बबूला होता रहता, लगाया क्यों था फिर मुझे, बंद करना था, तो रात भर मैं उधर वेट कर रहा था कब आए, 4 बजे 4 बजे 4 बजे। और फाइनली ये श्रेणी बहुत कम होती है कि उठते हैं और उठते ही पूरे दिन की चुनौतियां लेने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो अब हमको निर्धारित करना है कि हम हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाएं और हमारे भाग्य को कौन सी श्रेणी में डालते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। तो भगवत गीता जब भगवान ने सुनाई, हमने अभी अभी जो बात कही थी संस्कृति के विषय में कि हमारे वर्तमान से हम हमारे भविष्य को उज्जवल करें, तो हम ये उदाहरण दे रहे थे कि जैसे अभी ये जो समय वर्तमान 8:55 ये समय हो रहा है, ये समय आपके लिए भी समान है और पूरे नासिक में जितने नागरिक हैं, भारत में जितने नागरिक हैं, उनके लिए भी यही समय हो रहा है। परंतु ये समय आप लोगों ने यहां पर आकर बिताना चाहा तो ये समय वर्तमान का आपके भविष्य को बदलेगा। आपने अनजाने में आ गए होंगे, किसी के कहने पर आ गए होंगे या ऐसे ही टहलते हुए आ गए होंगे, परंतु जो चयन आपने अभी इस समय किया है करने का, ये आपके भविष्य में बदलाव लाएगा। ये अलग बात है कि वर्तमान ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है उसमें आप लोग कितना सुन रहे हैं, आ गए होंगे, इसमें भी जो भी 500-600 आप लोग बैठे हैं उसमें से कितने वो बाहर जो चल रहा है उसको सुन रहे हैं, कितने इधर सुन रहे हैं, कितने मन को सुन रहे हैं। मन बहुत कुछ बोलता रहता है लेक्चर के बीच में, ऐसा नहीं कि खाली यही मैं बोल रहा हूं, मन भी बहुत कुछ अंदर से बोलता रहता है, उसको सुन रहे हैं। इसलिए भगवद गीता एक ही समय 3 शख्स उन्होंने सुनी, 3 व्यक्तियों ने भगवद गीता सुनी, धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन। और तीनों ने भगवद गीता जो सुनी, तीनों की भगवद गीता सुनने के पश्चात उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ये जानने योग्य है। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ने भी वही भगवद गीता उसी समय सुनी, परंतु धृतराष्ट्र डिडंट वॉन्ट टू चेंज हिज अटैचमेंट फॉर दुर्योधन, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे सुनने के पश्चात कि अरे ऐसे ऐसे सिद्धांत भगवान ने सुनाए हैं, सब कुछ सुनने के पश्चात, तो ये पहली श्रेणी के श्रोता होते हैं, सुनते हैं, परंतु जो आसक्तियां हैं उसको वैसे ही पूरा सुनने के पश्चात फिर फाइनली, अभी जैसे मुझे बता रहे थे, मेरे स्वरूप दामोदर प्रभु जब आए थे वो बता रहे थे कि जयद्वैत महाराज को दुबई में एक बंदे ने प्रश्न पूछा। अब सोचो जयद्वैत महाराज को प्रश्न पूछते हैं, जयद्वैत महाराज इस्कॉन में बहुत आंसर देने में एकदम लॉजिकल आंसर और उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं, तो बहुत सोच समझ के उनसे क्वेश्चन पूछना लोग करते हैं, हिम्मत रखने वाले प्रश्न पूछते हैं उनसे। तो एक ने वहां पर, उसे पता नहीं था तो कोई नया नया शायद आएगा, उसने क्वेश्चन पूछा, महाराज दाल में बाल आ जाए तो क्या करना चाहिए। अब इन्होंने पूरा भगवत गीता के ऊपर फिलोसॉफिकल लेक्चर दिया था, उसके बाद प्रश्न क्या पूछता है कि दाल में बाल आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो इन्होंने जो महाराज ने जो आंसर दिया उसके बाद इसके एक दो बाल गिर गए होंगे। महाराज ने कहा अगर एक बाल आए तो निकाल दो, बहुत सारे बाल आए तो विग बना लो। मतलब ऐसे लेक्चर के बाद, जैसे मैं एक बार यही उदाहरण दे रहा था कि मैंने माइंड कंट्रोल के ऊपर 2 घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था एक कॉलेज में, ऐसे ही पूरा पावर पॉइंट के साथ माइंड कंट्रोल के ऊपर। उसके बाद एक स्टूडेंट आता है मेरे को क्वेश्चन पूछता है, सर बताइए वो जो शिवजी ने गणेश जी का सर काटा था, पार्वती ने वो कटे हुए सर का क्या किया। मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। 2 घंटे मैंने आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल के ऊपर लेक्चर दिया है, मैंने थोड़ी सी अपेक्षा रखी थी कि ये कम से कम माइंड के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कटे हुए उनके सर का पार्वती ने क्या किया। मैंने कहा क्या फर्क पड़ेगा तेरे जीवन में, फ्रिज में रखा था बोल। तो कई कैटेगरी के होते हैं कि कुछ पल्ले नहीं पड़ता धृतराष्ट्र। फिर संजय ने श्रवण किया, संजय का निष्कर्ष क्या था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर यत्र शरीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, अंतिम श्लोक संजय द्वारा कहा गया। तो संजय का निष्कर्ष क्या था कि हां जहां पर योगेश्वर भगवान है और पार्थ धनुर्धर है वहां पर श्री विजय भूति ये सब कुछ है, परंतु संजय की दुविधा क्या थी कि धृतराष्ट्र की नौकरी नहीं छोड़ सके। हां समझ में सब कुछ आया, गुणगान किया, परंतु धृतराष्ट्र की नौकरी नहीं छोड़ सके। धृतराष्ट्र डिंट वॉन्ट टू संजय कुंड चेंज, धृतराष्ट्र डिंट वॉन्ट टू चेंज संजय कुंड चेंज। तो ये कैटेगरी में बहुत मिलेंगे कि भगवत गीता सुनते हैं, अच्छी भी बहुत लगती है, बहुत अच्छा बोला, पति की बात बताई, लेकिन उनको जब पूछो कि तो फिर आपने क्या सोचा, मैंने क्या सोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा, आपने सोचा ना, सोच के तो आप बोल रहे थे। फाइनली अर्जुन ने जो श्रवण किया, अर्जुन changed his destiny using his will and his skill, दोनों का समन्वय अर्जुन ने किया और अपने भाग्य को बदला। तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन सी श्रेणी के श्रोता, कौन से लिसनिंग क्लब को ज्वाइन करने वाले हैं। एक धृतराष्ट्र लिसनिंग क्लब, संजय लिसनिंग क्लब और अर्जुन लिसनिंग क्लब। श्रवण करने के पश्चात अर्जुन ने कह दिया, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे बस, दाय विल बी डन नॉट माय। तो तीन प्रकार की कमाई होती है। हम लोग इस मुद्दे पर हैं, एम्बिशन वर्सेस डेस्टिनी। बहुत इंटरेस्टिंग है तीन प्रकार की कमाई। एक है बाप कमाई, कि होते ना कई लोग, दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, कि ऐसे परिवार में पैदा हो गए कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग किसकी कमाई पे जीते हैं? बाप की कमाई। इसलिए वो एक दोहा है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दो प्रकार के पूत होंगे, या तो सपूत होगा या कपूत होगा। तो पिता अगर धन संचय कर रहा है, अगर सपूत है तो भी जरूरत नहीं है, कपूत है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बाप कमाई, इसके पश्चात एक है पाप कमाई। इसमें भी बहुत से लोग इस कलयुग में आप पाएंगे देखते हुए कि जो पाप की कमाई पर अपने भाग्य को पता नहीं वो उदित कर रहे हैं या बुझा रहे हैं। और एक है आप कमाई। तो कौन सी है तीन प्रकार की कमाई? बाप, पाप और आप। एक बार एक राजा की पुत्री, राजकुमारी, अपनी सहेलियों के साथ, वो जो उनके राज्य का उपवन था, जो कि थोड़े वन के अंदर था, वहां पर विहार करने गई। तो वहां का जो सरोवर था, उस सरोवर में वो स्नान कर रही थी, और उसी समय एक कोई बेचारा दुखियारा उस सरोवर से लगे हुए पर्वत से आत्महत्या करने के लिए कूदा। तो ये लोग नहा रहे हैं, इसे नहीं पता ये पर्वत से कूदा है आत्महत्या करने के लिए। उसी समय इस सरोवर में एक मगरमच्छ राजकुमारी को खाने के लिए अपना जबड़ा खोल रहा है। टाइमिंग देखो, ये मगरमच्छ राजकुमारी को खाने के लिए मुंह खोला है अपना, उसी समय ये ऊपर से जो आत्महत्या करने के लिए कूदा इस मगरमच्छ पे कूदा। इसे नहीं पता था ये मगरमच्छ है यहां पे, इसे भी नहीं पता राजकुमारी भी है, राजकुमारी को नहीं पता ये ऊपर से कौन टपका। मगरमच्छ डर गया कि ये हुआ क्या, वो डर के मारे भाग गया। अब बाकी सारी जो उनकी दासियां राजकुमारी की, उन्होंने देखा ये मरा तो नहीं, इसने देखा कि ये लोग कौन है यहां पर, ये दासियां इसको लेकर राजा के पास गई कि सरकार आपकी बेटी को इसने बचाया, ये खड़ा हुआ है, सरकार कौन है, ये लोग कौन है, शादी इसकी मेरी बेटी के साथ हो जानी चाहिए। तो ये सोचने लगा कि आत्महत्या करना अच्छा था कि बुरा था, मैं मतलब अभी हो रही है कि पहले हुई कि नहीं हुई। एक अरब शेख था, तो उसने एडवर्टाइजमेंट किया कि उसके बड़े उसके बंगले में उसने एक स्विमिंग पूल, ऐसे 100 मीटर का लंबा स्विमिंग पूल, उसने एक चैलेंज रखा था कि इस स्विमिंग पूल में सबसे खतरनाक मगरमच्छ और घड़ियाल है, और जो तैरकर एक छोर से दूसरे छोर जाएगा उसको मैं मेरी आधी संपत्ति दे दूंगा, मेरी बेटी उसका हाथ दे दूंगा, ऐसे करके चैलेंज। सब लोग इकट्ठा हुए कि कौन इस चैलेंज को करेगा। पूरा स्विमिंग पूल किससे भरा हुआ है, ऐसे खतरनाक मगरमच्छ इनसे भरा हुआ। एक बंदा धड़ाधड़ कूद के वो स्विमिंग पूरा पार करके वन पीस में आ गया। ये इतना आश्चर्यचकित हो गया ये शेख कि कैसे ये बच गया ऐसा तैराक। मान गए भाई, मान गए तुमको, तुम्हें मेरी आधी संपत्ति चाहिए। उसने कहा नहीं, तो मेरी बेटी का हाथ शादी में वो भी नहीं चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए? मुझे धक्का किसने मारा बताओ। तो कई बार हमारे जीवन में कमाई ऐसी आ जाती है हमारे जीवन, तो अब वो हम निर्धारित करेंगे कि वो कौन सी कमाई है, बाप पाप या आप। तो अभी हम आपको दो वीडियोस दिखाएंगे। पहला वीडियो है जिसके अंदर अय्याशी की अमीरी बताई गई है, और ठीक इसके बाद वाला वीडियो जिसके अंदर गरीबी की इंसानियत। दोनों बहुत ही ऑपोजिट वीडियोज हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि एम्बिशन और डेस्टिनी
आणि ब्रेक नंतर एक इंटरेस्टिंग बातमी आहे। जगातला सर्वात स्वस्त 4G मोबाईल फोन ज्या कंपनीनं देशवासियांना देऊ केला त्याच कंपनीच्या मालकीणबाई नीता अंबानी यांच्याकडच्या फोनची किंमत ऐकली तर तुम्ही चक्रावून जाल। ऍपलचा आयफोन तब्बल 311 कोटींचा हा सध्या नीता अंबानी यांच्याकडे आहे।
फॉल्कन सुपरनोटा आयफोन 6 पिंक डायमंड। जगातला सर्वात महागडा फोन, किंमत तब्बल 311 कोटी, आणि त्याची मालकीण कोण आहे माहिती आहे? भारतातल्या सर्वात श्रीमंत कुटुंबाची मालकीण अर्थात नीता अंबानी। गेलात ना चक्राऊन? फोनची खासियत, फॉल्कन सुपरनोटा आयफोन 6 पिंक डायमंड 2014 लॉन्च झालाय। 24 कॅरेट गोल्ड आणि पिंक गोल्ड पासून हा फोन बनवण्यात आलाय। त्यावर प्लॅटिनमचं कोटिंग आहे जेणेकरून हा फोन कधीच तुटणार नाही। हा फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न केला तरी मालकाला लगेच अलर्टचा मेसेज मिळतो। या फोनची निर्मिती देखील मर्यादित आहे, त्यामुळे या फोनची निर्मिती मागणीनुसारच केली जाते। नीता अंबानी नाव एक शौक अनेक। आपल्या लक्झरियस लाईफनं नेहमीच लोकांच्या चर्चेत असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानींची पत्नी। साड्या असो, घड्याळ असो, काहीच नाही तर अगदी सॅन्डलही असो, बाईंचे शौक काही थांबत नाहीत। नीता अंबानींच्या चहा पिण्याचा कपही खास जपानमधून आलाय, ज्याची किंमत तब्बल 3 लाख रुपये। बुल्गारी, कार्टियार, रॅडो, गुची, केल्विन क्लेन सारख्या ब्रँडची प्रत्येकी 5 लाखांची घड्याळ त्या घालतात। नीता अंबानींच्या हँडबॅगचं कलेक्शन तर निराळच आहे। हिऱ्यानं मढवलेली बॅग वापरण्याचा शौक आहे बाईंना। शनेल, गोयार्ड, जिमी चुकेरी या ब्रँडची आवड आहे नीता अंबानींना, ज्याची किंमत सुद्धा 3 ते 4 लाखांच्या घरात आहे। सँडलचे शौक तर बाईंचे निराळेच आहेत। नीता अंबानी एकदा घातलेली चप्पल आणि कपडे पुन्हा कधीच घालत नाहीत।
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष असलेले मुकेश अंबानी यांची अँटिलिया ही 27 मजली इमारत दक्षिण मुंबईतल्या अल्टा माउंट रोडवर आहे, ज्याची किंमत अंदाजे 13,000 कोटी रुपये इतकी आहे।
आता एवढी करोडोची संपत्ती असल्यावर अशी शान शौकी तर होणारच ना। होऊ दे चर्चा, पैसा आहे घरचा। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा।
Thank you. तेरी ठेरी मेरी गलियों में खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा मुझ में भी है किस्सा तेरा मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा मुझ में भी है किस्सा तेरा अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया फिर की अरदास मेरा जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है तेरी तो मैं जान न पाया तुझको मेरी सारी खबर है तू मेरी रहमत का घर है रब राखा सब रब दी महर है कोई ना समझा कोई ना जाना तू समझे मेरी पीड़ा वीर की अरदास वीरा वीर की अरदास वीरा वीर की अरदास वीरा वीर की अरदास वीरा
One makes a living out of what one gets, but one gets a life out of what one gives. How rich you are. How will you define how rich you are? When you drop a tear, how many hands reach out to wipe that before it falls on the ground? That's how rich you are. How many things you have at home which money cannot buy, that's how rich you are. इसलिए ये बहुत interesting quote इस connection में आज मैं prepare करते समय मेरे हाथ आया. Give me the strength to change the changeable, give me the endurance to face the unchangeable, and give me the wisdom to know the difference between the two. एक बहुत सुंदर स्टोरी है एक ऐसे ही गरीब भिखारी की जिसको रोज जो भी कुछ भीख में उसको मिलता तो वो ये देखता कि जितना उसको भीख में मिला है उसमें से कुछ चोरी हो रहा है रोज तो उसे समझ में नहीं आया कि मैं एक भिखारी हूं और मेरी भीख से भी कोई चोरी कर रहा है तो क्योंकि जो भी उसको भीख में मिलता वो उसको बचा कर रखता दिन भर के खाने के लिए तो उसने देखा छिप कर कि चोरी कौन कर रहा है तो एक चूहा आता था एक चूहा आता था और चूहा उसकी भीख की चोरी कर कर ले जाता तो उसने उस चूहे को एक बार पकड़ा और पूछा कि भाई तू मुझसे क्या चुरा रहा है मेरे पास तो वैसे ही कुछ है नहीं जो भी थोड़ा बहुत मुझे भीख में मिलता है वो भी तू चुरा कर ले जा रहा है तो चूहे ने कहा क्योंकि तेरे भाग्य में उतना ही है जितना बचा रहता है मेरे चुराने के पश्चात उतना ही तेरे भाग्य में है तो इस भिखारी ने इस चूहे को पूछा कि तू इतना जानता है मेरे भाग्य के विषय में तो मेरे भाग्य को किसने लिखा है और मेरे भाग्य में और क्या है ये तूने कैसे जाना किससे जाना बताएगा मुझे तो चूहे ने कहा यह तुझे केवल भगवान बुद्ध बता पाएंगे ये उनके जीवन की स्टोरी है और वो कहां मिलेंगे वो हिमालय पर्वत की गुफा में ध्यान में हैं तो उनसे जाकर तू पूछ तो ये अब निकलता है उस यात्रा में भगवान बुद्ध से मिलने के लिए हिमालय पर्वत तो सबसे पहले वो जब पहला बसेरा अपना करता है किसी के घर में तो वो एक साधारण सा घर, उस घर में जो परिवार रहता था उनकी एक बेटी 16 वर्ष की, तो जब रात में इसे ठहरने के लिए उन्होंने जगह दी, पूछा कि भाई तू कहां जा रहा है, तू कहां से आया है? मैं तो एक भिखारी हूं, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूं, बताया गया है कि वो मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वो हमारे भाग्य के विषय में बताते हैं। तो ये जो महिला थी, इसने कहा कि मेरी बेटी, ये जो इसे तुम देख रहे हो, इसके विषय में जाकर पूछना, उन भगवान बुद्ध से पूछना, ये बचपन से गूंगी है, ये कुछ बोल नहीं पाती, तो क्या ये जिंदगी भर गूंगी रहेगी? ये प्रश्न मेरी तरफ से उनसे पूछना। ये बोला ठीक है, मैं पूछता हूं। आगे निकला ये दूसरे दिन, फिर इसने देखा कि इतने पर्वतों को पार करना है हिमालय तक पहुंचने के लिए, तो एक सन्यासी मिला उस घाटियों में, पर्वतों की घाटियों में एक सन्यासी मिला, और सन्यासी के पास एक बड़ा उसका ब्रह्मदंड था। तो सन्यासी ने पूछा कि भाई तू कहां जा रहा है? इसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने के लिए हिमालय की चोटी पर जा रहा हूं। तो उसने कहा कि मेरा ब्रह्मदंड वो ले जाएगा तुझे, परंतु मेरा एक प्रश्न पूछना उनसे कि मेरी मुक्ति कब होगी, मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, मेरी मुक्ति कब होगी जाके पूछना। हाँ ठीक है, ये भी पूछ लूंगा। फिर आगे जो फाइनल चैलेंज, चुनौती उसके सामने आती है, वो इतना बड़ा वहां का जो एक सरोवर, उसको पार करना है, और वो सरोवर में ठंडा पानी, तैर के भी पार नहीं कर सकता ये, तब इसे कैसे पार किया जाए? तो वहां पर एक बड़ा कछुआ, वो कहता है कि मेरे पीठ पर आ जाओ, मैं पार करा दूंगा। तो उस कछुए ने जो अंतिम चुनौती थी इस भिखारी की, इस भिक्षुक की, वो कर दी पूरी। और फिर इस कछुए ने भी कहा कि मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना भगवान बुद्ध से, कि मैं 500 साल से जी रहा हूं, और मैं भी उद्धार, मेरी मुक्ति चाहता हूं, तो कब मेरी मुक्ति होगी? क्योंकि मेरे विषय में भविष्यवाणी हुई है कि मैं मेरे अगले जीवन में मैं ऊंची उड़ान भरता गरुड़ जी का सेवक बनूंगा, क्योंकि मैं हर समय ऐसी धीमी चाल चलता रहता हूं, तो मुझे ऊंची उड़ान भरनी है, ये मेरे भविष्य में बताया गया, परंतु कब होगा पता नहीं, तो पूछना भगवान बुद्ध से। तो ये तीन प्रश्न इसको बोले गए थे पूछने के लिए, और इसका खुद का प्रश्न था। तो जैसे ही ये पहुंचता है, आमना सामना होता है भगवान बुद्ध के सामने, भगवान बुद्ध कहते हैं केवल तीन प्रश्न पूछ सकते हो, इतनी दूर ये आया। इसे कहा, अरे लेकिन मेरे पास तो चार प्रश्न हैं। उन्होंने कहा केवल तीन प्रश्न पूछ सकते हो। तो इसने सोचा, तो मैं तो चूहा थोड़ा बहुत मेरा ले जाता था, कुछ खास चोरी इतनी नहीं होती थी, फिर भी मुझे पेट तो भर जाता था मेरा, तो क्यों ना मैं वो तीन प्रश्न इनके पूछ लूं जिन्होंने मेरी सहायता की रास्ते में। तो सबसे पहला प्रश्न कि वो 16 वर्षीय उस परिवार की जो बेटी, कि उसका गुंगापन कब दूर होगा, पूछा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जब उसे उसका जीवन साथी प्राप्त होगा तो उसका गुंगापन उसी क्षण दूर हो जाएगा। फिर वो सन्यासी, उसकी मुक्ति कब होगी? वो सन्यासी इतने वर्षों से तपस्या में लगे हुए हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो सन्यासी अपना ब्रह्मदंड छोड़ नहीं रहे, आसक्त हैं उस ब्रह्मदंड से, क्योंकि उसमें बहुत शक्तियां हैं। जब उसे परित्याग उसका करेंगे, उनकी मुक्ति उसी क्षण। और वो कछुआ, वो कछुए का जो कवच है ऊपर वाला, जो शेल है उसका, वो शेल से आसक्त है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो जब वो उसे छोड़ेगा, उसका त्याग करेगा, तो उसका भी उद्धार निश्चित है उसी क्षण। ऐसे अपना प्रश्न वो छोड़ देता है, और इन तीनों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान प्राप्त करने के पश्चात फिर लौटता है, कछुए को बताता है कि क्या भगवान बुद्ध ने समाधान के रूप में तुम्हें बताया है। जैसे ही ये कछुआ सुनता है, ये अपना कवच त्यागता है, उसने अपना कवच त्यागा, उसके कवच के नीचे ऐसे बेशकीमती मोती और हीरे छिपे हुए होते हैं। तो कछुआ कहता है कि अब मेरी मुक्ति हो गई है, ये सब मेरे किस काम के, ये तुम रख लो। क्या मिलता है उस भिक्षुक को? हीरे, बेशकीमती हीरे और मोती वो उसे प्राप्त होते हैं। फिर वो आगे चलता है, सन्यासी की जो समस्या थी उसका समाधान भगवान बुद्ध ने जो दिया कि जब तक वो ब्रह्मदंड नहीं त्यागेंगे वो सन्यासी, उनकी मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने तुरंत अपना ब्रह्मदंड त्यागा, उनकी मुक्ति हुई। ये बहुत खुश हुआ कि अरे ये सब कुछ मैं एक सूत्रधार बना, इतनी खुशी हो रही थी। फिर फाइनली उस परिवार के घर गया, जैसे उस परिवार के घर गया पहुंचा तो देखा कि जो पिताजी थे वो बाहर लकड़ी काटने के लिए गए थे, मां रसोई घर में काम कर रही थी, और ये बेटी ने जैसे ही इसको देखा तो बेटी बोलने लगी, अरे तुम ही तो थे जो कुछ महीने पहले हमारे घर पर आए थे। तो जैसे ही इसने सुना कि ये जो बचपन से गूंगी थी ये बोलने लगी मेरे बोलने से पहले, क्योंकि समाधान क्या था कि जब इसे उसका जीवन साथी मिल जाएगा उसका गूंगापन दूर हो जाएगा। और फिर इसे समझ में आया कि वास्तविक रूप में मेरे भाग्य के विषय में मैं गया था पूछने के लिए, परंतु जब मैंने अन्यों का भाग्य सुधारा, अन्यों के भाग्यों को सुधारने में मेरा भाग्य मेरे कल्पना के परे सुधरा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जीवन में किसी से अच्छा बनना उससे ज्यादा बेहतर है किसी का अच्छा करना। यह है जीवन की सफलता। जैसे कि हमने श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव मनाया, क्या जरूरत थी श्रील प्रभुपाद को उस उम्र में वो एक मालवाहक जहाज में वृंदावन से निकलकर ऐसे जगह पर जाना, वृंदावन जो कि भक्ति का मुख्यालय उसे छोड़कर भुक्ति के मुख्यालय में गए, न्यूयॉर्क अमेरिका। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने जो आदेश दिया था और पूरे गुरु परंपरा ने जो उनको ये आदेश दिया था, चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी कि ये सारे गुरु वर्ग और अवतार ये सभी आते हैं हमारे भाग्य को बदलने के लिए। यदि हम हमारी स्वेच्छा को सही दिशा में रखें, और इसलिए जैसे श्रील प्रभुपाद वो अपने शिष्यों को कहा करते थे कि मैंने सब कुछ तुम्हें कर दिया, ये पूरी संस्था, इसके अंदर ग्रंथ, पुस्तकें, मंदिर, भक्तों का संघ, प्रसाद, ये पूरा युग धर्म सब कुछ दिया है। प्रभुपाद ने कहा जस्ट एक्सेप्ट इट, केवल इसे स्वीकार करो। एक भक्त उदाहरण दे रहे थे कि जैसे होता है ना कि हम लोग फेस्टिवल्स में डेकोरेशंस करते हैं, तोरण लगाते हैं इत्यादि वगैरह, तो प्रभुपाद ने अलग अलग फूलों को लेकर सारे आचार्यों की टीकाएं और उनका निचोड़, अलग अलग फूलों को लेकर प्रभुपाद ने उनको पिरोकर तोरण बनाया। हमको प्रभुपाद दे रहे हैं, खुद भी लगा सकते थे, हमको प्रभुपाद दे रहे हैं कि जाके तुम लगाओ ताकि इस भगवान के उत्सव में, भगवान के अवतरण के उत्सव में क्या हो कि तुम्हारी तरफ से भी सेवा हो। इसलिए हमारी क्या योग्यता है, ये भगवत गीता सुनाना सुनना हमारी क्या योग्यता है कि हम लोग का अगर अतीत देखा जाए तो हमने क्या ऐसा किया था कि जो हमें प्राप्त हुआ। जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा, कि हमारे अंदर ऐसी क्या योग्यता थी। प्रभुपाद ने कहा नहीं थी, मैंने क्रिएट की, निर्माण की तुम्हारी योग्यता। तो वही प्रभुपाद जैसे आचार्य, भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार, ये सब एक साथ आते हैं। हमने हाल ही में जन्माष्टमी मनाई और प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस मनाया। ये दोनों का समन्वय, गुरु और गौरांग, इनका समन्वय क्या है ताकि हमारे कर्म के बंधन के बीच में वो हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप कर हमारे भाग्य को उज्जवल बनाएं। और हमें जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा करना क्या है, वी हैव टू बिकम कोऑपरेटर्स नॉट कॉम्पिटिटर्स ऑफ कृष्णा, वी हैव टू बिकम कोऑपरेटर्स। और जब हम इस मोड में अपना जीवन जिएंगे टू बिकम कोऑपरेटर्स ऑफ गुरु एंड कृष्णा, डेफिनेटली वी विल रिडीम आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस मटीरियल टैबरनेकल एंड रीच द स्पिरिचुअल अबोर्ड विच इज अवर रियल होम। ये है हमारा परम भाग्य का उदय होना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।